प्राकथन। पुरातत्व एक सतत स्फीयमान एवं बहुआयामी विषय है जिसमें मड़ऊ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेव में गति ही है। पुरातत्व का समस्त अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया जाता है। मानव के उद्भव एवं विकास के असंदिग्ध प्रमाण प्रतिनूतन काल में मिलते हैं, इसलिए इसे मानव का काल भी कहा जाता है। मानवेतर स्थिति में मानव सम और अंत में पूर्ण विकसित मानव की अवस्था तक ही अत्यंत सुदीर्घ और जटिल यात्रा तय करने में सहस्त्रों लाखों वर्षों का समय लगा होगा। पुरातत्व में एक सुनिश्चित आकार प्रकार के उपकरण बनाने एवं प्रयोग करने वाले प्राणी को मानव की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। उपकरण उसकी बौद्धिक उपलब्धि के प्राचीनतम प्रमाण है। उसके शरीरेतर ये पुरावशेष उसे पशुओं से पृथक करते हैं। मानव के सतत परिवर्तनशील जीवन की जो झांकी पुरातत्व प्रस्तुत करता है, उसके अनुसार मानव की विकास यात्रा में कई अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। विकास के इस लंबे रास्ते पर हमें मानव के संतत और अमित पदचिन्ह पुरावशेषों के रूप में मिलते हैं। तकनीकी विकास की दृष्टि से मानव के इतिहास को स्थूल रूप से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया जा सकता है। एक अन्य वर्गीकरण लेखन कला के ज्ञान पर आधारित है। इस आधार पर लिपि के विकास के पूर्व काल का प्रागैतिहासिक काल और लेखन कला के विकास के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातत्व ऐसे विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है जो मानव से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी को लिखित दस्तावेजों की सीमा से परे बढ़ाता है। पुरातत्व के अनुशीलन के माध्यम से ऐतिहासिक शोध की सीमित और संकुचित दायरे से निकाल कर नया आयाम प्रदान किया जा सकता है। पुराविद पृथ्वी के आंचल में छिपे मानवकृत भौतिक पुरावशेषों को अन्वेषण और उत्खनन के द्वारा खोज निकालने के पश्चात अपनी संयत कल्पना के माध्यम से उनमें जीवन के स्पंदन का संचार करते हैं। इस कार्य को पुराविदों की शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। मानव के अतीत के अज्ञातनामा संस्कृतियों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन अवशिष्ट पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के आधार पर किया जाता है, जो विकट मानव समुदायों के रीति प्रथाओं परंपराओं आदि को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करती है। पुरातत्व में पुरावशेषों का उपयोग मात्र साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में नहीं। मानवकृत पुरावशेषों को मुख्यतः चल और अचल दो कोटियों में विभाजित किया जाता है। वे पुरावशेष जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव था, चल पुरावशेषों की श्रेणी में आते हैं, जैसे उपकरण, आभूषण, बर्तन आदि। जिन पुरावशेषों का स्थान परिवर्तन संभव नहीं था, उन्हें अचल पुरावशेष की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, जैसे कब्र, भवन आदि। पुरातात्विक साक्ष्यों की देश एवं काल के अनुसार संभावनाओं एवं सीमाओं को भी मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानव की उपलब्धियों का अध्ययन संभव नहीं है। पुरातात्विक सामग्री की सीमा पर विचार करते समय उसे मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम दो वर्गों के अंतर्गत तकनीकी एवं आर्थिक उपलब्धियों को स्थान दिया जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा इनके विषय में अध्ययन अपेक्षाकृत सरल है। सामाजिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों को तीसरे वर्ग में रखा जा सकता है, जिनके विषय में पुरातात्विक भौतिक प्रमाणों के आधार पर विवेचना करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। चौथे वर्ग में धार्मिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों की गणना की जा सकती है। मात्र पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से मानव की इन उपलब्धियों का विश्वसनीय अनुमान लगाना जटिलतम कहा जा सकता है। हाल ही में विकसित वैज्ञानिक विधियों के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भौतिक प्रमाणों के द्वारा मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों का विवेचन संभव है। आरएल बिनफोर्ड के अनुसार नवीनतम पुरातात्विक विधियों के माध्यम से मानव अतीत के समस्त पक्षों का निरूपण किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि नवीनतम वैज्ञानिक विधियों के से पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तथापि मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से भौतिक संस्कृति से परे का अध्ययन बहुत सरल कार्य नहीं है। लगभग एक दशक से मुझे एमए कक्षा में पुरातत्व के अध्यापन का जो सुयोग मिला है उसमें मैंने निरंतर अनुभव किया है कि इस विषय के प्रति विद्यार्थियों में विशेष अभिरुचि तो है, लेकिन उपयुक्त अध्ययन सामग्री के सहज उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है। वस्तुतः पुरातत्व विषयक अधिकतर सामग्री शोध पत्र पत्रिकाओं एवं पुरास्थलों के उत्खनन आख्याओं में ही उपलब्ध है। यद्यपि पुरातत्व के कुछ पक्षों पर हिंदी भाषा में छात्रोपयोगी पुस्तकें लिखी गई हैं, तथापि इनमें विषयगत समग्रता का अभाव है। पुरातत्व विमर्श का प्रणयन इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। आशा है कि आत्मनिष्ठा के साथ किया गया यह प्रयास छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे अपने प्रयास में कितनी सफलता प्राप्त हुई है इसका निर्णय सुविज्ञ अध्येता ही करेंगे। गुरुजनों और अनेक पुरातत्ववेत्ताओं से प्राप्त प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक की रचना संभव हुई है। मैं उन सभी विद्वानों का विशेष आभारी हूँ जिनके विचार एवं उद्धरण प्रस्तुत कृति की रचना में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा का मैं विशेष आभार मानता हूं, जिनके प्रोत्साहन से मैं पुरातत्व में प्रवृत्त हुआ। विभागाध्यक्ष एवं कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे से जो प्रेरणा एवं प्रोत्साहन निरंतर प्राप्त होता रहा है उसके लिए मैं सादर नतमस्तक हूँ। विभाग के अन्य गुरुजनों में प्रोफेसर जसवंत सिंह नेगी, प्रोफेसर ब्रजनाथ सिंह यादव, प्रोफेसर उदय नारायण राय, डॉक्टर सिद्धेश्वरी नारायण राय, डॉक्टर शिवेश चंद्र भट्टाचार्य, डॉक्टर विनोद चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर संध्या मुखर्जी, डॉक्टर राधाकांत वर्मा, श्री विद्याधर मिश्र, श्री रामकृष्ण द्विवेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर उदय प्रकाश अरोड़ा के निरंतर प्रोत्साहन के बिना संभवतः इस पुस्तक की रचना नहीं हो पाती। डॉक्टर राधाकांत वर्मा ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की जो कृपा किया है उसके लिए आपका मैं ऋणी हूँ। इस कार्य में रुचि दिखलाने के लिए मैं अपने सहयोगियों सर्वश्री धनेश्वर मंडल, ब्रज बिहारी मिश्र, उमेश चट्टोपाध्याय, डॉक्टर जगन्नाथ पाल, डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर बनमाला मुधोलकर के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। डॉक्टर रणजीत सिंह राणा, श्री कमलाकर ठाकुर और डॉक्टर माणिकचंद से भी मुझे बराबर सहयोग मिला है। प्रोफेसर SD सांकलिया का अत्यंत आभारी हूँ, जिनकी कृतियों से मैं विशेष लाभान्वित हुआ हूँ। भारतीय पुरातत्व के पूर्व महानिदेशक श्री MN देशपांडे ने पूरा वॉक फॉरवर्ड लिखकर जो अनुग्रह किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रोफेसर KD वाजपेयी, सेवानिवृत्त टैगोर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग सागर विश्वविद्यालय शिमला, उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BB लाल, दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के निदेशक प्रोफेसर BN मिश्र का मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के विषय में अपनी सम्मति देकर मुझे अनुग्रहित किया है। डॉक्टर स्वराज्य प्रकाश गुप्त एवं श्री कैलाशनाथ दीक्षित ने मेरी शैक्षिक गतिविधियों में सदैव रुचि ली है, एतदर्थ मैं इनका विशेष कृतज्ञ हूँ। श्री जोनाथन मार्क केनोयर से प्राप्त सुझाव के लिए मैं आभारी हूँ। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने से प्रकाशन तक परम सुहित डॉक्टर राम निहोर पांडे ने जो आत्मीय सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं आपके प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर हरिनारायण दुबे से जो रचनात्मक सुझाव मिले हैं उनके लिए मैं उनका अतीव आभारी हूँ। डॉक्टर गंगासागर तिवारी, श्री अव्यक्त राम मिश्र, डॉक्टर राजछत्र मिश्र, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राज, डॉक्टर विमल चंद्र शुक्ल, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, डॉक्टर पारसनाथ मिश्र, डॉक्टर चंद्रदेव पांडे, डॉक्टर लालमणि दुबे से प्राप्त सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वश्री राजकुमार सिंह, सुशील कुमार शर्मा, लक्ष्मीकांत शुक्ल, भवनाथ सिंह, बाल गोपाल पांडे, डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्र, सर्वश्री देव प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, उदयनाथ त्रिपाठी ने लेखन के लिए बराबर प्रेरित किया है, इसके लिए मैं इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अतुल कुमार सिन्हा, डॉक्टर हरसहाय सिंह, डॉक्टर आदित्य प्रसाद ओझा से प्राप्त सहायता के लिए मैं आभार मानता हूँ। सर्वश्री लक्ष्मी नारायण पांडे, अवध नरेश पांडे, रामाभिलास शुक्ल, केशव प्रसाद पांडे, लीलाधर हरिहर प्रसाद, गणेश प्रसाद ने अपने अपने ढंग से मेरी जो सहायता की है इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पुस्तक लेखन में सहायता के लिए मैं अपनी पत्नी श्रीमती सुभद्रा पांडे को धन्यवाद देता हूँ। श्री शिव चंद्र ओझा ने प्रूफ रीडिंग के जटिल कार्य को जिस लगन एवं तत्परता के साथ किया है उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। शीघ्रता एवं कुशलता के साथ मुद्रण के लिए मिलन प्रिंटिंग प्रेस के अजय कुमार जायसवाल को धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यथेष्ट प्रयास के बाद भी पुस्तक में जो त्रुटियां रह गई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुस्तक के आगामी संस्करण को अधिक सार्थक एवं उपयोगी बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव सादर आमंत्रित है। रामनवमी 21 अप्रैल 1983। जय नारायण पांडे।